अच्छा, अब यहाँ तक ये बात हो गई। अब जो नेक्स्ट रुकू शुरू हो रहा है, इसके अंदर एक और किस्सा बयान किया गया, और ये किस्सा बड़ा दिलचस्प किस्सा इस हवाले से है कि उस जमाने के लिहाज से भी और हर जमाने में अल्लाह ताला ने माल के फितने के बारे में बताया है। माल का फितना इंसान को क्या से क्या बना देता है। और अभी पीछे भी बात हुई ना कि उन लोगों के साथ आप रहें जो दिन और रात अल्लाह का जिक्र करने वाले, उनके साथ ना जाएं जो अपनी ख्वाहिशात के बंदे हैं, जो अल्लाह के जिक्र से दूर हैं, उनको सारी बातें पता हैं और अल्लाह का जिक्र करना नहीं आता। पूरी पूरी मजलिस खत्म हो जाती है, लोग अल्लाह का जिक्र किए बगैर ही उठ जाते हैं, और उनमें हर तरह की डिस्कशन करते रहेंगे, अल्लाह ताला की बात आएगी नहीं। तो अब उसी मुताबिकत से एक किस्सा आ रहा है, और ये किस्सा बहुत ज्यादा मिलता जुलता भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मक्का में हालात थे ना, उनके साथ भी बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पे काफिर बहुत रिच थे और जो मुसलमान वहां पे लोग हुए थे वो सारे ज्यादातर मिस्कीन, गरीब, गुलाम, इस तरह से लोग थे। तो अल्लाह ताला के नजदीक किस चीज की वैल्यू है, अल्लाह ताला किन लोगों को वैल्यू देता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है माल से और स्टेटस से, कोई भी ताल्लुक नहीं। ठीक है, और यही बात हमें यहां पे भी समझाई गई, और दौरे दज्जाल में भी यही माल ही होगा ना जिसके पीछे लोग भागेंगे। जब वो कंट्रोल करेगा तमाम खजानों को, जब वो कंट्रोल करेगा क्रॉप्स को, फसलों को, खाने पीने को, यानी आपकी बेसिक नीड्स जो है ना, खाना पीना इंसान की बेसिक नीड है, उस तक को वो कंट्रोल कर लेगा, तब भी ये बात को नहीं भूलना कि जिसके पास माल है, जिसके पास ये सारी हकूमत है, जिसके पास अथॉरिटी और पावर है, तो यही सही है। ये बात यानी इस चीज को जेहन से नहीं निकालिएगा कि अल्लाह ताला के नजदीक इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का वो प्यारा नहीं है, या वो अल्लाह ताला के नजदीक कोई मकाम वाला नहीं है जिसके पास कोई बहुत माल और दौलत हो, और वो तो खुदाई का दावा कर देगा। ये भी समझ आ रहा है यहाँ पे इस किस्से में कि ये दुनिया कितनी टेम्पररी है, ये भी समझ आएगा, क्योंकि इसमें जिन चीजों पे इंसान मान करता है ना, मान जिन चीजों का उसको होता है कि हाँ मेरे पास तो ये है, कितनी आरजी है, कितनी जल्दी खत्म हो सकती है, हो जानी है चंद लम्हों में, इससे कभी इसे धोखा ना खाना। तो देखते हैं इस किस्से को और इससे सबक लेने की कोशिश करते हैं अपने लिए। वदरिब लहुम मसल रजुलैन, ए नबी इनको बयान कर दीजिए एक मिसाल दो आदमियों की। रजुल का तस्निया क्या है, रजुलैन। अच्छा, क्या क्या इनकी मिसाल है, जालना हमने बनाया, ना को आप नोट करें, हमने बनाया, ली अहदिहिमा इनमें से एक के लिए, जन्नतैन दो बाग, मिन आनाब जो बाग किसके थे, अंगूरों के। अच्छा, अब वो कैसे बाग थे, आपको पता है अंगूर बड़ी एक नाजुक सी चीज है, बड़ा जरा सा ही आप उसको दबाएं तो वो पिस जाता है, उसकी बेलें भी बड़ी नाजुक होती हैं। तो वह हफफ ना हुमा भी नखल, हमने इनको घेर दिया किनको, जन्नत इन को, इन दो बागों को, खजूरों के दरख्तों से। अभी तो पिछली आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत का जिक्र किया जो आखरत में वो देगा, जो असल जन्नत है, जो हमेशा की जन्नत है, और एक दुनिया की भी जन्नत है जो कि इतनी टेम्परेरी है, और वो किसी को भी अल्लाह दे सकता है, अपने फरमाबरदारों को भी, नाफरमानों को भी, उसका जिक्र है। दोनों जन्नतों में आप जरा कंपैरिजन करिएगा, ठीक है, क्योंकि असर इंसानियत दुनिया की जन्नत से धोखा खा जाती है ना। इस किस्से में तो है ही आरजी दुनिया की जन्नत का फितना, और दुनिया की जो लज्जतें हैं उसका फितना। तो अल्लाह ताला हर तरह से समझाता है, किस्सों के जरिए भी समझाता है, डरा के भी समझाता है, कोई खबरियां देके भी समझाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे एक दो आदमी थे। अब ये दो आदमी कौन थे? इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बनी इसराइल के दो आदमी थे जिनके में से एक के पास उसको विरासत में, दोनों को विरासत में कुछ माल मिला, 8,000 दिरहम मिले, और फिर उन्होंने उसको अलग अलग यानी डिवाइड कर लिया। एक ने अल्लाह के रास्ते में लगा लिया, एक ने बाग बनाया, वो बाग बड़ा फ्लरिश किया। और दूसरा इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक जनरल एक स्टोरी है, इसका उनसे नहीं कोई ताल्लुक है। ठीक है, बाहर क्या है, अल्लाह ताला ने एक हक बात ही सुनाई है कि अब आप देखें, एक गार्डन है जिसके अंदर अंगूर की बेलें हैं, अंगूर का फल है, और दूसरा एक और है जिसमें भी अंगूर है, और इन दोनों को सराउंड किया गया है, हफफना घेर लिया है खजूर के दरख्तों ने। खजूर के दरख्त समझ लें ऐसे हैं जैसे उनका सिक्योरिटी सिस्टम है कि कोई भी आंधी तूफान ये वो उनको कुछ नुकसान नहीं देगी अंगूर को। तो इसकी बाउंड्री जो है ना वो खजूर के दरख्त है। अच्छा, दो बाग हो गए ना, ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये दो बाग समझ लें इस तरह इमेजिन करें। अब इनके बीच में भी कुछ है, इन दो गार्डन्स के बीच में खेत हैं। ठीक है, अब कैसी आपको दिखाई गई कि बहुत एक वसी, और जन्नत कहते हैं, जो एक बुस्तान भी होता है उसको भी बाग कहते हैं, लेकिन जन्नत वो वाला बाग होता है जिसमें जरा सी भी जगह मट्टी की ना हो, सारा ग्रीन हो, सारे में यानी फल लगा हुआ है, सब हर तरफ हरियाली है, हर तरफ यानी कोई जमीन ऐसी खाली है ही नहीं रह गई। अच्छा, अब उसके अंदर इस तरह से इमेजिन करें, ये दो बाग दोनों यानी एक अंगूर का इस तरफ है, एक अंगूर का इस तरफ है, दोनों बागों के इर्द गिर्द बाड़ की तरह ये खजूर के बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, और दोनों के दरमियान में खेत है। अच्छा, किल्तल जन्नत ही नहीं आतत उकुला, अल्लाह ताला ना देखें इतनी डिटेल में हमें ये बातें बताई हैं ताकि आप सोचें कि उसके पास कितनी अल्लाह ताला ने इनामात की बारिश की हुई थी, नेमतों की बारिश की हुई थी, ऐसे कि इसकी एक एक डिटेल बताई कि कितना उसको अल्लाह ताला ने गनी कर दिया था। अच्छा, अब ये जो दोनों बाग थे ना, आतत उकुलहा, वो देते थे अपना फल। अब एक बात उकुलहा से हमें पता चली कि उसके अंदर सब कुछ जो कुछ भी था ना वो एडेबल था, कोई भी चीज जाया होने वाली नहीं, सब उकुल था, नहीं सारा ही फल उनका था, वो इतना जबरदस्त क्वालिटी का था, कोई सड़ा गला नहीं, कोई कीड़ा लगा नहीं, कोई खराब नहीं, कोई बाद खल फल जमीन पे गिर जाता है वो भी खराब हो जाता है, ऐसा भी नहीं था, मैंने कोई कमी नहीं थी, जितना लगाया सारा ही इस काबिल था कि वो यानी इस्तेमाल के काबिल हो, खाने के काबिल। और आप देखें ये खजूर और अंगूर का ही जिक्र यहाँ पे आया है, इसलिए ये खजूर और अंगूर ना ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे, और ये वो फल हैं, दोनों कुरान में भी कई जगह इन दोनों का जिक्र इकट्ठा आया है, ये वो फल हैं जो इतने इसलिए भी महंगे होते हैं कि ये होते थे कि ये आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सूख भी जाएं तो ये इस्तेमाल में लाने वाले के काबिल होते हैं, यानी आप अंगूर भी देख लें तो उसके अभी वो किशमिश बन जाती है, खजूर भी इसके छुआरे होते हैं, सूख के भी ये काम के काबिल है। तो यानी एक आदमी था इनमें जो बड़ा जिम्मेदार था, बड़ा चौधरी था, उसके पास इतनी फसल थी, फुल कैपेसिटी से जो है ना प्रोडक्शन हो रही थी, वलम तजलिम मिनहु शैया, और उसमें जरा भी कोई कमी नहीं थी, यानी आप देखें कि ये जो फसल बताई गई उसके अंदर खेत बताया गया, उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या और चीजें थी, वो जो सब्जियां हैं या और कोई फ्रूट थे वो भी थे, और ये खजूर और अंगूर का भी था, तो इससे पता चलता है कि सारा साल उसके पास ना कोई कोई फल या फसल तैयार हो रही है और इनकम आ रही है, इनकम जनरेटिंग था उसका ये समझ लें, जिसको हम अपनी जुबान में आजकल हम ना गार्डन या ये तो कम ही कहते हैं, उसको छोटा सा गार्डन समझते हैं किसी का घर में हो, समझ लें फार्म। तो उसका फार्म हाउस था ये, बहुत बड़ा फार्म था। अब यहाँ पे दूसरे का नहीं बताया गया कि उसके पास क्या था, इसलिए हो सकता है उसके पास इतनी कोई भी काबिले जिक्र चीज ना हो, वो कोई मालदार नहीं था, ठीक है। यही था जो जिसके पास इतना बड़ा फार्म था। वफज्जरना खिलालहुमा नहारा। अच्छा, अब किसी भी फसल या गार्डन या फार्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसका पानी कहाँ से आए। इसीलिए आप देखते हैं किसान जो है ना, वो पानी के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह बारिश कर दे। अब बारिश पे डिपेंड करती है ना सारी फसल, लेकिन इसको तो इसकी भी फिक्र नहीं थी, इसलिए क्योंकि जो बीचों बीच डायगनली आप ना, अगर आप एक पिक्चर बनाएं जिसमें दो ऐसे गार्डन बना दें और बीच में आप एक इधर भी अंगूर इधर भी अंगूर और उसकी सराउंड करते हैं, ऐसी पिक्चर बनाएं, उसको सराउंड करते हैं आप खजूर के बड़े दरख्तों से, और बीच में आपने खेत बना दिया और डायगनल बीच में से एक आप स्ट्रेट लाइन खींचे, ये थी नहर। इन दोनों के दरमियान में से, बागों के दरमियान में से नहर जा रही है, उसको कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े फार्म को पानी लगाना भी कोई आसान काम तो नहीं था। और जमाने में तो पानी का और भी मसले होते थे, लेकिन इसके पास तो ये भी मसला नहीं था। अल्लाह अकबर। तो अब फुल प्रोडक्शन में जा रहा। फज्जर ना से भी आप देखिए, फज्जर का लफ्ज है ना, तजरी नहीं है, फज्जर पहले तजरी, गशिंग मतलब फाड़ दिया, जैसे फजर कहते हैं ना फाड़ने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने फाड़ दिया, हमने बहा दिया, उसके अंदर से ऐसी नहर थी, ऐसी गशिंग नहर थी। तो फसलें भी इसका मतलब फिर ज्यादा होंगी, प्रोडक्शन भी इतनी ज्यादा अच्छी होती थी, और फुल कैपेसिटी के ऊपर सारा हो रहा था। जैसे आप कहते हैं ना लैंडलॉर्ड्स, तो वो लैंडलॉर्ड था, फिल्दी रिच, इतना कुछ था उसके पास। वह कहना लहू समर, उन उसके पास इतना समर था। समर से मतलब है और भी फल थे, ये तो है ही, मगर समर से मतलब नतीजा, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी चीज का भी नतीजा, तो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि यानी खूब खूब उसके पर पास माल था, इतना मालो दौलत था, और भी था इसके अलावा भी, सोने चांदी या घोड़े घर बार गुलाम नौकर चाकर, ये बड़ी दौलत थी उसके पास। तो आपको बेसिकली एक बंदा दिखाया जा रहा है जो बिजनेस टाइकून या लैंड लॉर्ड्स या हमारे मुल्कों के अंदर जागीरदार होते हैं, जमीनें होती हैं उनकी, और जमींदार को ही पता होता है वो तो जमीनों से कितनी उनको मोहब्बत भी होती है और कितना वो खुश होते हैं अपनी जमीनों को देख के, और उनके तो दिमाग भी आसमान पे होते हैं कि हम इतने बड़े जागीरदार हैं, हमारी तो एकड़ों पे हमारी जमीनें हैं और हमारे इतने मुरब्बे हैं और हमारे फलां हैं, इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो उनका फखर का यही बात होती है। आज का देख लें आप अपने शहरी उसके अंदर देख लें, तो कोई बिजनेस टाइकून जिसकी बहुत सारी कंपनियां हैं और उसको अब बिजनेस यहां से वहां तक है, तो फकाल अली साहिबी, तो उसने कहा अपने साथी से, हो सकता है ये कोई रिश्तेदार हो सकता है उसका कोई बचपन का कोई दोस्त हो सकता है कोई हमसाया हो, ठीक है। वह हुआ यो हाविर, इसलिए कि दूसरे आप ये ना एकदम सवाल करने लगे ना कि भाई उसने उसे कैसे दोस्ती कर ली, वो तो दोस्ती करने का तो उनको हुक्म दिया गया कि जो नेक हो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हो, इसने कैसे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बात जरूर नोट आप रखिएगा कि हमने 32-33 आयत में हमने ये देखा है ना, ना का लफ्ज, हफफ ना हुमा, जाल ना, पीछे भी जाल ना, फिर उसके बाद फज्जर ना, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आगे क्या होता है, वो अपने साथी के साथ मिलता है, वाह हुआ यो हाविर हुआ, और वो बातें करने लगती है, मैंने आपको बताया ना मुहावरा भी इसी से होता है, और यानी कन्वर्सेशन एक हो रही है। अब कन्वर्सेशन करते करते, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, उसने कहा अना अक्सरु मिनका मालं व आजु नफरा, मैं तुझसे ज्यादा हूं माल में और नफरी में। नफरी के भी मुफसरी ने बहुत सारे माने किए हैं, और इससे फैमिली, बच्चे, नौकर चाकर, फॉलोअर्स, फैंस, इस तरह के ने जो जो इम्प्लॉयज उसके, जो उसके पास काम करते थे वो लोग, मतलब ये सारे ही इसके अंदर माना आ जाता है कि मेरे पास बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़े बड़ी इज्जत वाला हूं इस मामले में, कि मेरा बहुत, मेरे पास, हम उर्दू में भी बोलते हैं ना नफरी, मेरी इतनी नफरी वो थी उसके पास, तो उस तरह से। तो ऐसा नहीं कि उसने आते ही उसको कह दिया अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास बहुत ज्यादा माल है और मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है और मैं तुम्हारे से ज्यादा हूँ, ये नहीं है बात हो रही। आप देखते हैं ना कि बाज़ लोगों के साथ आप बैठते हैं तो वो अपनी चीजों की धाक बिठाना शुरू कर देते हैं फौरन, अपनी अपनी बातों ही बातों में वो ये बता रहे होते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा हूं, और डू यू थिंक कि मैं क्या, मैं तुम्हें पता भी है कि मैं क्या हूं, मेरा फलां बच्चा फलां आईवी लीग में, फलां यूनिवर्सिटी के अंदर फलां कॉलेज में वो पढ़ रहा है, मेरी बेटी की फलां वजीर और अमीर के बच्चे के साथ फलाने, उसको आप जानते हो, उसके घर मेरी बेटी भी आई हुई है, और मेरी बस वो आदमी है तो वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को फलानी गाड़ी तोहफे में दी है एनिवर्सरी पे, मैंने कहा लेटेस्ट मॉडल की इसको दूं, और औरतें हैं तो वो कोई डायमंड्स की बातें हैं, कोई अपनी ये मेरे हस्बैंड ने मुझे फलां वक्त में दिया था, ये फलां में दिया था, और ये तो हम वेकेशन पे तो हम हर साल कहीं वहां जाते हैं, तो कभी कहीं जाते हैं तो हम स्विट्जरलैंड गए हुए थे, तो हम ये फलानी जगह पे गए हुए थे, और मतलब साल में हमारा 2-3 मिलियन का तो प्रॉफिट हो ही जाता है, और ये तो ये हमने, ये जो आप देख रहे हैं ये जमीन सामने, ये हमारी ही है, ये हमने 18 करोड़ में ली है। ये बातों बातों में ना वो प्रूव करते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा हूं, और बिलीव मी ऐसे लोग मैंने खुद अपने मुसलमानों में देखे हैं, और आज यकीन आपने भी देखे होंगे, जो कहीं भी किसी मजलिस में बैठते हैं ना, तो उन्होंने बस ये काम करना है, उनका एक तरीका ही है कि हमने किसी तरह ये बताना है कि हम बहुत माल वाले, हम बहुत पैसे वाले, हम बहुत लोगों को जानते हैं, हमारे ये देखें आरज़ू नफर, कितने ही लोग आपने ये कहते हुए सुने होंगे, हमारे कॉन्टेक्ट्स, उनके कॉन्टेक्ट्स पे भी उनको फख्र होता है, मेरे तो कॉन्टेक्ट्स फलां के साथ हैं, फलां उसको भी मैं जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, वो तो हमारे घर आके ठहरते हैं, वो तो फलां है, वो उसने मेरी दावत की, फलाने का मुझे फोन आ गया, नहीं कि ये बताने का क्या वो है। और ऐसे भी मैंने सुभान अल्लाह लोग देखे हैं जो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि उनसे मिले आपको यही नहीं पता चलता कि ये पीछे से कितने मालदार हैं, उनकी कोई बात से नहीं होता, उनके कोई रवैये से नहीं पता चलता, उनकी किसी बात से ही आप, यानी आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बाद में ऐसे लोगों को भी जानते हैं, बाद में पता चला कि अच्छा ये तो क्या क्या इनकी यानी माल और क्या क्या इनके बिजनेसेस और क्या क्या इनकी चीजें हैं, मगर उन्होंने कभी रोब झाड़ा ही नहीं, कभी इम्पोज नहीं किया, लेकिन बाज लोग इम्पोज करते हैं, वो अपना स्टेटस बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी को पता चले कि मेरे पास है क्या, मैं क्या चीज हूं, तो मान लो इस चीज को, तो जरूरी नहीं होता इंसान अल्फाज से कहे मैं तुमसे ज्यादा हूं, पता है तुम्हें, ये नहीं जरूरी होता, उसकी सारी बातें ही आपको ये बता देती है कि बाज दफा बच्चों की डिग्रियों पे, बच्चों की जॉब्स पे, उनकी पोजीशंस, उन किन किन कंपनी में क्या लगे हुए हैं, क्या वो कहाँ के सीईओ हैं और कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और किसके, मेरे बच्चे तो फलाने अरबी शेखों के साथ उठते हैं और फलां उसके साथ है, और यानी उनकी सारी बातें इसके गिर्द घूमती हैं। अब देखें वो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि मैं इससे बेटर हूं, मैं इससे बेहतर हूं, ये वो बताना चाह रहा है, क्योंकि उसके जहन के अंदर क्या है कि ये चीजें हैं ना जो इंसान को बेहतर बनाती हैं, और वेरी सॉरी टू से हम में से अक्सरियत की यही सोच है, अक्सरियत की सोच यही है कि ये अच्छा है क्योंकि इसके पास इतना पैसा है, ये क्या चीज है, ये फलां गाड़ी चलाता है, ये फलां इसका घर देखो कहाँ है, इतना तो ये कमा लेता होगा, फौरन कैलकुलेट करते हैं कितना कमाता होगा, फिर हम ये सोचते हैं कि ये इतना अमीर है, ओ इसके साथ तो दोस्ती करो, अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया की कोई भी चीज कोई भी चीज इस काबिल नहीं है जिस पे इंसान इतराए, तकबर करे, क्योंकि इन चीजों की अल्लाह के सामने कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता रही हूं ना, ना को आप गौर करें, नून अलिफ ना, हमने दिया हमने दिया हमने दिया, इस चीज को इंसान भूल जाता है। जब उसके पास नेमतें आती हैं तो सोचता है मैंने किया मैंने किया, अना। आप देखें पीछे और इस स्टेटमेंट में फर्क देखें, अल्लाह ताला फरमाता है हमने उसको ये भी दिया, हमने उसको ये भी दिया, हमने उसको ये भी दिया, उसने क्या किया, बजाय इसके कि वो इस चीज को एक्नॉलेज करें, मेरे रब ने सब कुछ दिया। इसने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई, उन्होंने कहा, मैंने किसी से पूछा ये आपका घर है, उन्होंने कहा नहीं ये तो अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, देखिए कैसी भी सोच होती है तो ऐसी बातें भी मुंह से निकलती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। और कहां ये कि हमने जो चीज हमारा कोई कारनामा भी नहीं, उसी को भी हम बार बार बताते हैं कि ये मेरा मेरा मेरा, हाँ जी मैंने बड़ी मेहनत की, हाँ जी मेरे पास ये डिग्री थी, हाँ जी मैंने वहां इन्वेस्टमेंट की, हाँ जी मेरे पास ये घर, हाँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज मेरी किराए पे चढ़ी हुई है। देखिए ना, उसके पास बाग था तो आप उसको बाग, अब आज हमारे पास बाग वाली चीज नहीं है तो हम उसको शायद कुछ समझ ही ना रहे होंगे कोई चीज है, हालांकि जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये व्हाट डज इट मीन। चलो हमारे लिए ये चीज नहीं है तो हम कुछ और तरह से समझ लें कि भाई मेरे तो जहाज चलते हैं, मैं तो अपने प्राइवेट जेट में जाता हूं, क्या कहेंगे आप उसको फिर? ठीक है, तो यानी उसने यहां पर आकर बजाय अल्लाह ताला की तरफ इस चीज को निस्बत करने की कि ये अल्लाह ने मुझे दिया, मेरे अल्लाह की मेहरबानी, मेरे अल्लाह का फजल, मैं तो किसी काबिल नहीं, उसने कहा मैं जाता हूं, मेरे पास ये, इस मैं के अंदर वो चीज झलक रही है जो तकब्बुर कहा जाता है। इस मैं के अंदर है वो अपनी बड़ाई, मैं कोई चीज हूं, मैं मेरा। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम जो भी नेमते रखते हैं उनके बारे में हम कैसा सोचते हैं, ये मेरी काबिलियत है, ये मैंने किया है, या ये अल्लाह ताला का करम है। क्या है हमारी सोच, खुद को भी यहाँ पे हम रख के सोचें और इसके अंदर अपने आप को खड़ा करके सोचें कि अगर मेरे पास इतना कुछ होता तो मैं क्या क्या सोच होती मेरी। शायद पता नहीं ये चीज को भी इमेजिन कर सके या नहीं कर सके, क्योंकि अक्सर हम डायलॉग तो बोल देते हैं कि हाँ जी मैं तो होती तो मेरे पास तो मिलियन डॉलर होता, मैंने सारा ही पता नहीं लुटा देना था गरीबों में और मिस्कीनों में और खुद आराम से बैठ जाना था। ये जो पावर होती है और जो माल होता है, यही दो चीजें हैं जिनका यहाँ पे जिक्र है ना। पावर, पावरफुल इंसान अपने आप को समझता है जब उसके साथ जत्था होता है, फॉलोइंग है, या जो भी फैन है, या वोटर है, या मेरे वर्कर हैं, या खादिम है, या मेरे मजारे हैं, या मेरी फैमिली इतनी बड़ी है पीछे से, मेरा खानदान कितना बड़ा है आपको क्या पता ही है, ये भी बहुत शोखी की बात होती है, आज़ू नफरा में ये सब चीजें आ गई। तो यही दो चीजें हैं ना, पैसा और ये, जो इंसान को धोखा दे देता है और इंसान इनकी वजह से ही फिसलता है और अपने आप को बड़ी चीज समझने लगता है। ये चीजें जब आ जाती हैं तो उनका आना वो इंसान के लिए फितना बन जाता है, कि इम्तिहान बन जाता है, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि मैं इम्तिहान में। वो मालो दौलत है, इल्म है, बच्चे हैं, डिग्री है, स्टेटस है, कुर्सी पोजीशन है, जॉब है कोई आपकी, आपकी कोई स्मार्टनेस है, बड़ी आप अकल वाले हैं, या कोई खूबसूरती है, इस सारी चीज को इंसान ना अपनी अपनी तरफ निस्बत करता है और अपनी ही कोई काबिलियत समझता है इसमें, कि जो भी मुझे मिल रहा है खूबसूरती में, हालांकि क्या आपका कमाल है, लेकिन बस उसमें भी बड़ी काबिलियत है, मेरा गोरा रंग है, मेरी खूबसूरती है, मैं ये हूँ, मुझे बड़ा पहनना ओढ़ना आता है। तो ये कैसे इंसान अपनी तरफ निस्बत कर सकता है, कोई चीज भी हमारी अपनी नहीं। और आप देखेंगे यहाँ पे कि वाकई कोई चीज इंसान की अपनी नहीं है, इसीलिए तो एक सेकंड भी नहीं लगा और वो चीज उड़ गई। अपनी होती तो रखते ना अपने पास, तुम्हारा ही कमाल था तो रहती तुम्हारे पास, किधर चली गई फिर, जिसकी थी उसने वापस ले ली। फिर देखें आप, इंसान को कहता है मेरा जोरे बाजू, मेरी अथॉरिटी। इसीलिए आप देखें आज जिसके पास भी, चाहे पैसा है, चाहे पावर है, चाहे जरा सा भी कोई होता है, अब कोई जरा सा ही कोई कुछ जरा सा किसी को पोजीशन मिल जाए ना, आप क्लास में देखिए मसलन, अगर क्लास में एक पोजीशन आपको मिल गई है, उसके बाद आपका रवैया क्या है? कम लोग ऐसे होते हैं जो वहां बैठ के उस पोजीशन के ऊपर अपनी बड़ाई जताने से बाज आ जाएं, कम लोग ऐसे होते हैं। ज्यादा को ये शौक होता है कि मैं अपनी पावर दिखाऊं तो सही ना, सर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी पावर इसको पता चलेगी, जो जिस कुर्सी पे भी बैठ गया, आप एक मामूली जगह पे जाके, एक दफ्तर में भी चले जाएंगे ना, आप एक क्लर्क से भी बात करेंगे तो उसने भी दिखाना है कि मेरे पास पावर कितनी है, मैं तो नहीं जाने दूंगा आपकी फाइल आगे। उसके पास जितनी पावर है, उस बेचारे ने सोचा मैं इसके ऊपर ही अपना रोब जमा लूं। जो जहां पर है आज, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि वो वहीं अपनी उससे बाज नहीं आता, जिसके पास जो एक चौकीदार भी है ना, वो भी अपनी आगे टांग कर देगा, कहेगा मैंने जाने नहीं देना, उसको लगता है कि मैं इस तरह से अपनी पावर दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो ये पावर का ना एक फितना होता है, ये सर पे चढ़ जाती है। ठीक है, अब चलो हमारे पास उतनी पावर नहीं जितनी फिरौन के पास थी या जितनी इस आदमी के पास, कहीं ना कहीं तो होगी ना, चाहे घरों में ही हो, घरों में ही अगर आप एक बहू हैं या आप एक सास हैं, जिनको किसी एक को नहीं कहती, किसी घर में कोई है, किसी में कोई, उसका वो ही नशा उनको चढ़ जाता है। ये नशा है, वाकई पावर का नशा होता है, वो नशा ना दिमाग पे चढ़ जाता है, उसको लगता है आई एम ऑल इन ऑल, उसको अपने हाथ में ना वो लगती है कंट्रोल लगता है, मेरे पास कंट्रोल है, मैं अब जैसे चाहूंगी करूंगी। अब वो कंट्रोल ही उसको मगरूर बना देता है, उसको अपनी बड़ाई का एहसास होने लगता है, मैं अब किसी काबिल हूं। आप देखिए ये फिरौन को, ये क्यों मूसा अलैहि सलाम के पीछे अपनी सारी आर्मी लेके आ गया था समंदर के अंदर, क्यों आया था? इसलिए कि वो समझता था अगर इसके लिए खुल गया ये, तो मेरे लिए कैसे नहीं खुलेगा, मेरे लिए भी खुला रहेगा, मैं भी ऐसे ही निकल जाऊंगा। गरूर, तकब्बुर, ये मेरे से बच के कहां से जाएंगे, मैं इनको सही करता हूं, मैं इनके पीछे जाता हूं। तो ये तकब्बुर इंसान को तो डबो के रख देता है, इंसान से फिर ऐसी बातें निकल आता है कि जो इतराने वाली होती हैं, किसी की बातों से स्मेल आती है तकब्बुर की, ये एक स्मेल है, क्योंकि वो दिमाग में नहीं फिर रहता, वो खन्नास जो होता है ना, वो जुबान पे आता है जरूर, जब आपके दिमाग के अंदर होगा ना कि मैं कोई चीज हूं, तो वो जुबान पे जरूर आ जाएगा। तो अब उसकी भी जुबान पे आया, या उसने जिस तरह से भी अपनी धाक बिठाई, उसने उस तरह कहा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं जी, मेरे पास क्या नहीं, मतलब खाला जन्नत हो। उसने कहा चलो आओ, मैं तुम्हें अपने दिखाता हूँ, अपने बाग तो दिखाऊं ना, चलो आओ। वह हुआ जालिमुन लिनफ्सी, और वो अपनी जान पर जुल्म करने वाला था, जुल्म तो वो उस बंदे पे कर रहा था कि वो बेचारा एक इतना नहीं है, मतलब तो मीडियोकर सा बंदा है माल के एतबार से, और ये उसको लेके जा रहा है, तो जुल्म तो देखने में तो देखा जाए तो उसको कितना हकीर कर रहा है, जलील कर रहा है ना, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वो अपने आप पे जुल्म कर रहा था, कैसे? तकब्बुर करके, अपने आप पे जुल्म है ये। इंसान जब कोई गुनाह करता है, तकब्बुर तो एक बड़ी बात है, बड़ा गुनाह है, तो इंसान जब कोई गुनाह करता है तो वो किसी और पे नहीं कुछ ज्यादती कर रहा होता, अपने आप पे जुल्म कर रहा होता। तो कहने लगा अगला उसका सुनने, अगला उसका जुर्म, कालमा अजुन्नु अन तबीद हाजी अबदा, मुझे तो नहीं लगता ये कभी खत्म होगा। किसी ने कहा था, अल्लाह अकबर, इसको एक और तरह से मैं स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, हाँ आप सोचेंगे ऐसा कौन कह सकता है, कभी आपने सुना है किसी को कहते हुए कि मेरी तो 7 नस्लें भी बैठ के खाए ना तो उनके लिए काफी है? क्या है इसके अंदर, ये कभी खत्म नहीं होना। आपके शायद जुबान में डिफरेंट तरह से इन चीजों को अदा किया जाए, मगर माना सेम ही है, ये मेरी तो 7 नस्लें भी खाई, हमारी तो पुश्तें भी खाए ना, खत्म नहीं होना, हमारे पास इतना है। ये भी जुबान से लोगों के अदा होता है। अल्लाह अकबर। कहता ये देखें, इतने इतनी बड़ी हमारा सरमाया लगा हुआ है, इतने हमारा ये फ्लरिश कर रहा है, नहर बह रही है, देखे ना किसी चीज की भी, जब इंसान के पास ना ऐसी इतना सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो उसको लगता ही है कि ये अब क्या खत्म होगा, आप कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? जब इंसान खुद को बेनियाज देखता है, फिर इंसान देखता है कि अब तो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग सारा कुछ फ्लरिश कर रहा है। देखिए ना, उसके इतने लोग काम कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, ये सबका बॉस है, ये बड़ी इसकी प्लानिंग है, हर साल बाग में भी फल आ रहा है और अच्छे से अच्छा बेस्ट फल आने लगा हुआ है, फसलें भी ऐसे चल रही हैं, और भी कुछ बहुत कुछ ऑलरेडी ट्रेजर्स उसके पास जो भी पड़े हुए हैं, तो कितना कुछ है, ये तो नेवर एंडिंग है। तबीयत का मतलब एंड हो जाना, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी एंड होगा ये सब कुछ जो है ना। तो यानी ये भी उसकी एक गलती है कि उसने ये कहा कि ये सारा कुछ ऐसे ही कभी खत्म ना होने वाला है। हाय अल्लाह हू अकबर, वमा अज़ुन्नु सा'अ क़ायमतन, कितना बेड़ा गर्क है कि फिर उसके बाद कयामत का भी इनकार कर दी। असल में कि मैंने लगता ही नहीं कि कभी कयामत आनी है। तो असल में बात यह है कि जब इंसान के पास ना बड़ा कुछ हो जाता है ना, और सारी चीजें उसकी परफेक्ट चल रही होती है ना, तो वैसे भी उस कयामत का जिक्र उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये जो सारी नेम तो वो कहते हैं यहाँ पे ही हमारी जन्नत है, हमने जन्नत लेके क्या करनी, यहाँ पे हमारी कोई जन्नत से कम हम रह रहे हैं। नौकर चाकर, घर, गाड़ियां, बिजनेस, ड्राइवर, खानसाम में मतलब पैर दबाने वाली अलग है, सर में तेल डालने वाली अलग है, इतनी मासियां रखी हुई हैं, इतना कुछ मेरा चल रहा है, बच्चे भी हर तरह से बड़े स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, मुझे हमें क्या है, हमने हमने क्या करनी है, आखरत की जन्नत हमारी तो यहाँ पे ही जन्नत। वो ये नहीं है बेचारे गरीबों को, जो लोग उनको तो जन्नत का कोई बात है, वो उन बेचारों के साथ यहाँ मुश्किल है जिंदगी, तो हमारे लिए तो कुछ भी मसला नहीं, स्टेटस भी इतना ऊंचा है, लोग पूछते हैं, आगे पीछे होते हैं, एक फोन कॉल के ऊपर काम हो जाते हैं हमारे। तो अब ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला को खुश करने की भी कोई ऐसी ज्यादा फिक्र थोड़ी रहती है कि वो दुआएं करें, वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, इल्ला माशाल्लाह में, कि सब नहीं ऐसे होते, लेकिन इल्ला माशाल्लाह को कोई होते भी हैं जो कि फिर भी सीधे रहते हैं। अगर ज्यादातर आप यही देखेंगे, मुझे मुझे इसलिए भी पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मैं हर तरह के क्राउड के अंदर दर्सी है, मैं हर तरह के लोगों में, यकीन जाने जितने बहुत ज्यादा जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, वो दर्स भी आप उनको देते रहो, चाहे आप उनको, एक तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा ही होता है कि वो पहले ही मना कर दिया जाता है आखिरत की कोई बात ना करें उससे, क्योंकि वो उनकी नाजुक मिजाज के ऊपर गरा गुजरती है, आपने आखिरत की बात कर दी वो डिप्रेस हो जाएंगे, वो डिप्रेस नहीं होना चाहते, वो कहते हैं मैं ऐसी डराने वाली बातें ना किया करें, एक तो पहले ही ये कह दिया जाता है। दूसरा ये होता है कि जब उनके सामने कोई भी दर्स देंगे ना, उनको नहीं कोई इंटरेस्ट होता सुनने का, पता नहीं बेचारों किस तरह मुश्किल से बैठ गए यहाँ पे, किसी ने बुला ही लिया किसी बेचारे ने, तो अब बैठना पड़ रहा है। अब उनको ये होता है चलो घर में जरा बरकत हो जाएगी, चलो एक दुआ वुआ करा देंगे, बस इतना सा सिर्फ होता है, बाकी उससे ज्यादा नहीं। इल्ला माशाल्लाह में सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं आपको अक्सरियत की बात बता रही हूँ कि उधर दर्स आप दे रहे होंगे, कोई भी उनको ऐसी बात बता देंगे जिसके ऊपर दिल हिल जाए, लेकिन उनका रवैया या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, उनके ऐसे होते हैं कि उनको कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कह रहे हैं कब खत्म हो ये, इसलिए कि वो इतने दुनिया में ग्रोस्ड होते हैं, इतने वो इसमें गर्क है ना, उनका मजा क्या कर रहे हैं आप, क्या आप अल्लाह का जिक्र, ये जिक्र, वो आखरत की कोई याद, ये आखरत का क्या हमारे साथ लेना देना, हमारे इतने ऐश है, हमारे पास और इतने काम है, अब हम ये सोचने शुरू कर दे, ये अप्रोच होती है, वो नहीं बैठना चाहते, नहीं इस टॉपिक को सुनना चाहते, उनको ये लगता है हम इंजॉय कर रहे हैं ना, हमें इंजॉय करने दो प्लीज, हमारे मजे क्यों खराब करते हो आप, अब जाओ जाके अल्लाह अल्लाह करो। तो वो कहता है कि हमारे कयामत कोई नहीं, कयामत बाद, आज भी लोग कहते हैं मौलवियों की ऐसी ही बातें हैं, कोई कयामत व्यामत नहीं कुछ नहीं, ऐसे ये इनके डरावे हैं बस। और जब कोई इंसान आखरत का ही जिक्र ना सुनना चाहे, सुनना भी ना चाहे, तैयारी क्या करेगा वो, खुद बताएं, जिसको आखरत का ये कि इंसान कहे कि मुझे लौट के जाना है, मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है, मुझे हिसाब किताब देना है, पैगंबर भी और सहाबा कराम भी एक दूसरे के साथ ये जिक्र किया करते थे कि एक दूसरे को आखरत की याद दिलाएं। आप सल्लम ने तो फरमा दिया अकलमंद ही हुआ है जो अपनी मौत को सबसे ज्यादा याद करता है और उसकी तैयारी करता है। ये कहते हैं नहीं, ये चीजें ना करें। आपको लग रहा होगा कि जैसे ये स्टोरी में भी एक पुराने जमाने की स्टोरी है जो कि हमें बताई जा रही है, जो कि हमारे साथ क्या ताल्लुक है। चलो जी, एक स्टोरी, प्लीज इसको आज के सिनेरियो में रख के देखें। डायलॉग में भी उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया लेकिन वो सब्सटेंस वही है, ठीक है। और ये दुनिया है, कोई इससे ये ना सोच ले कि अल्लाह ने इसको इसलिए इतना दिया है कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला मोमिन को भी देता है, फासिक को भी देता है। अल्लाह ताला ने कारून को भी दिया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिया, लेकिन कारून अल्लाह का पसंदीदा नहीं था। फिरौन को भी इक्तदार दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी इक्तदार दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इक्तदार दिया, लेकिन एक अल्लाह ताला का पसंदीदा एक नहीं है। तो ये बिल्कुल इस चीज से कभी भी आप इसको ना समझे कि ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। और उसने ये समझ लिया, उसने कहा मेरे पास ऐश और आराम इतना है, वाला यार रुदित तू इला रब्बी ला जिदन खैर मिन हम उनकलबा। कितनी बेपरवाही है, अब सोचिए ना इस बात में कितनी बेपरवाही लापरवाही है। अगर मैं लौटा भी दिया गया, अव्वल तो लौटना ही नहीं है, चलो छोड़ो ये कयामत, कयामत कोई चीज नहीं है। अगर लौटा दिया गया, ये नहीं कि मैं लौटूंगा, एक लफ्ज होता है कि मैंने लौटना है अपने अल्लाह की तरफ, है ना, ये ऐसे कहना चाहिए ना। रुदित तू है मजबूर, मुझे लौटा दिया गया यानी अगर मुझे जाना ही पड़ गया, मुझे मजबूर कर ही दिया गया, तो फिर भी मैं जरूर पाऊंगा कि श्योरिटी, श्योरिटी कितनी ज्यादा है। ला अजीदन्ना, अलबत्ता मैं जरूर पाऊंगा। उसको इतनी खुशफहमी है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन है, यकीन है उसको। देखिए ये ताकीदें दो हैं, ल और नून मुशद्दद, मुझे यकीनन इससे भी बेहतर मिलेगा वहां पे। और रब्बी कहा, इसका मतलब उसका ये तो ईमान था कि एक रब है मेरा। लेकिन इसके बावजूद लोग, आगे आएगी बात, के कुफर भी करते हैं, शिर्क भी करते हैं। तो वो कहता है कि मेरे रब की तरफ अगर मुझे जाना पड़ भी गया तो कोई मसला नहीं है, वहां पे भी हमें अच्छा ही मिलेगा। जाहिर है जिसने यहाँ पे दिया गया वहां नहीं देगा, तो यहाँ पे भी अच्छा है, तो कोई राजी ही होगा हमें, हमारे अंदर उसने कुछ देखा ही होगा जो हमें यहाँ पे दिया है, तो फिर वो वहां पे भी दे देगा हमें। और जब इतना यकीन हो ना इंसान को, जिसको देखिए ना, जिसको श्योरिटी हो कि मेरे तो वहां पे जन्नत मिलनी है, मेरे तो वहां पे अच्छा मिलना है, मुझे बताएं वो क्यों यहाँ पे कुछ अमल करेगा, वो क्यों को मुशक्कत उठाएगा, वो क्यों नेकी के काम करने के लिए आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। आप अपने कभी थोड़ा सा माल भी अल्लाह के रास्ते में देना है तो कुछ कुर्बानी करनी पड़ी है आपको ना, अपने माल में से निकाल के आपने दिया। आप नमाज देख लें, आप रोजा देख लें, आप सदका देख लें, आप कोई भी चीज, आप हज देख लें, सब में मुशक्कत तो है ना। कहीं नींद की है, कहीं भूख की है, कहीं वैसे ट्रेवलिंग की है, कहीं अपना माल देने की है, कहीं और किसी को माफ करना है, या किसी से माफी मांगनी है, या किसी के ऊपर कोई एहसान करना है, किसी का नेकी करनी, सबके अंदर एफर्ट चाहिए होती है। क्यों वो करेगा यार, जिसको पता है कि मुझे तो वहां पे अच्छा मिलना ही है। हाँ वो जरूर करेगा जो डरता होगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, वो करेगा एफर्ट, वो परेशान होगा, वो फिकर लगाएगा, वो मेहनत करेगा, वो भागेगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है दौड़ो जन्नत की तरफ, दौड़ो इसको पाने की तरफ, सबकत ले जाओ नेकियों के अंदर। उसको क्या जरूरत है, तो उसने तो सोचा होगा जैसे अक्सरियत, अल्लाह माफ हमें, हमें माफ कर दे अल्लाह, हमें से अक्सरियत इस खुशफहमी में ही है कि हमारे लिए जन्नत ही रखी हुई है। कभी हमें लेटेस्ट, हमारे कोई आखिरी सोच में भी जाके नहीं है ये बात कि कभी जहन्नुम भी हो सकती है हमारे लिए, आखिरी सोच में भी नहीं है, 1% का चांस भी नहीं है। 1% का भी अगर हमें यकीन होता ना कि 1% भी ये चीज हो सकती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। ये जो जहन्नुम का जिक्र हमने पढ़ा है, इसके बाद हम क्या कहते, हमें तो नींद ना आती, हम तो भागते नेकियों की तरफ, हम तो गुनाहों से ऐसे बचते जैसे लोग कोई सांप, जहरीले सांप से बचता है। लेकिन क्या बात है कि हम आराम करते हैं, हमें को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि हमें नहीं है ये बात, हमें सबको ये है कि मैं मुसलमान तो हूं ना, तो मेरे जन्नत में ही जाना है ना, और जन्नत में कौन जाएगा, मैं ही तो जाऊंगी, और नहीं होगा तो कोई मेरी सिफारिश ही करा के कोई ले जाएगा। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। तो अब उसके तकब्बुर की इंतहा हो गई कि आखरत का भी इनकार कर दिया। और अक्सर जब इंसान पर दिमाग के ऊपर ये सवार होता है माल और उसका स्टेटस, उसका ये आजू नफारा, तो फिर वो ऐसे ही करता है। अल्लाह ताला हमें माफ करे। कहा, अब कहा उसके दोस्त ने, अब उसके दोस्त ने जिस वक्त के उसने अल्लाह ताला के ऊपर ये बात कर दी ना, पहले तो उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे से ज्यादा हूं, तो ठीक है इसको कह दिया था तो कुछ नहीं बोला, वो खामोश रहा। लेकिन जब उसने कह दिया भी मेरा तो ये कभी नहीं खत्म होना, लेकिन जब उसने कहा ना कि कयामत नहीं कभी कायम होनी और वहां पे भी जाके मुझे अच्छा ही मिलेगा, तो तब वो बोला, इसलिए कि जो एक मोमिन होता है ना उसके लिए ये बड़ी बात नहीं कि मेरी जात पे किसी ने क्यों बात कर दी, अपनी अना नहीं बड़ी होती, मगर उसके अंदर ईमानी गैरत होती है। अगर कोई अल्लाह ताला के ऊपर कोई बात करता है ना तो वो फिर उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वह साहिब वो यहाँ जब वो उससे बातचीत कर रहा था, अकफरता बिल्लज़ी खलकका मिन तुराब, तुम क्या कुफर करते हो उसका जिसने तुम्हें पैदा किया है। कुफर का मतलब दो माने होते हैं कुफर के, एक तो मतलब होता है कि इनकार कर देना, एक माने होते हैं नाशुक्री करना, नाशुक्री भी असल में इनकार है अल्लाह की नियमतों का। तो तुम उसकी नाशुक्री कर रहे हो उस जात की जिसने तुम्हें पैदा किया, किस चीज से पैदा किया ये तो सोचो, किससे पैदा किया, मट्टी से, फिर नुतफे से। देखिए इंसान सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा हुआ, उसके बाद हम सारे नुतफे से पैदा हुए। इतनी हकीर चीज और इतनी गंदी चीज के अगर कपड़ों पे लग जाए तो इंसान उसको धोए। अगर हम सब अपने ओरिजिन के ऊपर गौर करें तो सारा तकब्बुर निकल जाए कि हम थे क्या, अल्लाह ताला ने इससे एक इंसान बना के खड़ा कर दिया, तो हमें तो सजदे से सर नहीं उठाना चाहिए। उत्सुम सव्वा का रजुला, फिर तुम्हें एक आदमी बना दिया, एक मर्द बना दिया, तो देखो तुम क्या थे और क्या से क्या। इसके अंदर ना उसने दोनों बातों का जवाब दे दिया। अब आप खुद बताएंगे कैसे, एक कौन सी बात का, तकब्बुर का भी उसके, और एक आखरत का जो इनकार किया था उसने, दोनों का जवाब दे दिया। और एक इस चीज का भी जवाब दे दिया कि तुम मेरे से कम हो। कैसे, तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए, सोचिए कैसे। देखें इस चीज का जवाब, उसके तकब्बुर का कैसे जवाब है कि तुम क्या थे, मैं और तुम इसी तुराब से और नुतफे से ही तो बने, ठीक है, तो यानी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं, फिर तकब्बुर किस बात का। जैसे किसी एक मुतकब्बिर एक आदमी जा रहा था ना, तो बड़ी प्यारी बात है कि उसको किसी ने कहा कि इतना तकब्बुर तुम किस बात का कर रहे हो, तो वो बोला तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। उसने कहा हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, तुम वो हो जिसका आगाज नुतफा है और जिसका अंजाम वो सीधा लाश, और उसके बीच में तुम अपना फुजला उठाए हुए फिर रहे हो, और क्या है इस जिस्म के अंदर। तो यानी कि क्या, यानी तकब्बुर तो खत्म हो जाता है ना जब इंसान इस चीज पे गौर कर ले कि मैं, मेरी ओरिजिन क्या है, मेरी बेस क्या है, मैं कहां से पैदा हुआ। और फिर आखरत का इनकार जो उसने किया उससे कैसे, कि जो रब मट्टी से तुम्हें एक और नुतफे से उठा के एक इंसान बना सकता है, वही दोबारा भी मट्टी से उठा के एक इंसान बना सकता है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। और इस चीज का भी जवाब आ गया कि तुम जो बड़ाई का इजहार कर रहे हो मेरे ऊपर, तो तुम भी नुतफे से बने, मैं भी नुतफे से बना, तो तुम्हारा मेरे ऊपर क्या बड़ाई का फिर रह गया, क्या बड़ाई रह गई फिर। तो बहुत ही खूबसूरत जवाब। और यहां से उसकी आजी का भी पता चलता है कि ये नहीं, हाँ तुम अपने आप को बड़ी चीज समझते हो, मैं तो ये हूं, मैं तो इतना नेक हूं, और तुम क्या नेक हो, और तुम आपको कोई ये, ऐसी कोई बात नहीं की। आजी खुद को भी कहा कि लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, लाकिन ये लाकिन लाकिन्ना जो है ना, लाकिन और अना ये दोनों मिला के हैं, लाकिन अना अकूलु, ये है असल में। लेकिन मैं ये कहता हूं, अकुलू हजफ है हु अल्लाह रब्बी, के वो अल्लाह मेरा रब है। मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह मेरा रब है, वला उशरीकु भी रब्बी अहद, और मैं तो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करता। तो उसने किसको शरीक किया था, ये उसको क्यों कह रहा है? इसलिए उसने अपने आप को शरीक किया ना, मैंने किया है ये। मैं कारून भी क्या था, कारून तो बनी इसराइल से था, वो थोड़ी ये फिरौन की कौम से था। लेकिन उसको क्यों अल्लाह ताला ने धंसा दिया, उसके तकब्बुर की वजह से। ये मैं, शैतान ने भी मैं ही तो की थी, उसने ये तो नहीं कहा था अल्लाह मैं तुझे नहीं मानता, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होके कहा था अना खैरु मिन। ये जो मैं होती है ना, अना अक्सर, मैं हूं ज्यादा बढ़ के, ये मैं अच्छी चीज नहीं होती, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो ये जो उसने तकब्बुर किया था, तो उसने शिर्क किया था, अपने आप को खुदा समझ बैठा था, अपने आप को खुदा बना लिया था उसने, चाहे बातों में वो भी रब्बी कह रहा है, लेकिन उसने अपने आप को खुदा बनाया हुआ था। तो ऐसा नहीं होता कि जरूरी कि इंसान मुंह से ही बोले तो कहे कि मैं कोई खुदा हूं, वो अपने आप को या खुदा समझना शुरू कर देता है ना, उसके दिमाग में ये होता है, तो वो फिर एक शिर्क ही है। तो यहां पे उसका अना शिर्क है, अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपने माल, अपनी समझ, इस चीज का तकब्बुर था ना उसको, कि देखो मेरे पास कितना कुछ है। अल्लाह अकबर। अब ये बंदा अपने ऊपर क्यों रख के कह रहा है? उसको नहीं कह रहा कि तुमने शिर्क किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने क्यों किया? नहीं, इसलिए क्योंकि ये भी एक तबलीग और नसीहत का तरीका होता है। आपने देखा पीछे असहाबे कहफ ने भी अपने ऊपर रख के कहा कि अगर हम किसी और की इबादत करेंगे अल्लाह के अलावा, तो हम तो बड़ी शतता होगी, ये बहुत झूठी बात होगी ये। और वहां पे भी उन्होंने उसको नहीं कहा, अपने आप को कहा, यहां पे भी ये अपने आप को कह रहा है। वजह ये है कि नसीहत अक्सर दूसरों को कड़वी लगती है, तो इसको अगर अच्छे तरीके से आप करेंगे तो तब ये इफेक्टिव होती है। तो जब अपने ऊपर आके कहा, तो दूसरा तो नहीं फिर कुछ कह सकता ना, लेकिन उसको बात समझा भी थी, उसको कन्वे भी कर दिया, मैसेज भी चला गया, और उसको बुरा भी ना लगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसमें बहुत अहम पॉइंट ये है कि अब जब हम नसीहत कर रहे होते हैं ना, हम अपने ऊपर रख के, तो अब वाकई हमें भी तो नसीहत की जरूरत होती है। अब हम चाहे हम कहेंगे मैं तो नहीं ये गुनाह करती, फिर मुझे क्यों नसीहत की जरूरत है? वो करती है, उसको जरूरत है, मैं तो नहीं करती। तो क्या आपको यकीन है कि इस गुनाह में आप कभी भी नहीं पड़ेंगे मरते दम तक? आपको गारंटी है इसकी? नहीं है ना? तो फिर जितनी उसको नसीहत की जरूरत है, उतनी हमें खुद भी नसीहत की जरूरत है अपने लिए, कि हम अपने आप को नसीहत करें। तो ये उसने शिर्क किया, जो अपने जोरे बाजू के ऊपर उसको भरोसा था, ये उसका शिर्क था कि वो अब तकबुर कर रहा था और अपने आप को बड़ी चीज समझता था, और ये उसका तकबुर ही था जिसने जिसको यहाँ पे उसने इस तरह से कहा कि मैं तो ऐसा शिर्क नहीं करता। अच्छा, इस तरह से भी देखा जाए तो देखें, सबसे बड़ा जुर्म उस आदमी ने ये किया था ना, कि उसने तकबुर किया, और उसने फिर पहले उसने तकबुर किया, फिर उसके बाद उसने अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार कर दिया, कि जब उसने कहा कि कभी भी नहीं कयामत कायम होगी, तो इसका मतलब अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करना है ना। तो लेकिन जब उसने जवाब दिया, तो फिर उसने सबसे पहले उस चीज से शुरू किया कि जो सबसे बड़ी बात थी, कि अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार, तो उसने अल्लाह ताला की कुदरत ही दिखाई, जो उस ऑर्डर में नहीं जवाब दिया जिस ऑर्डर में उसने किया था। पहले तो उसने इसके ऊपर अपनी धाक बिठाई थी ना, मैं हूं अना अक्सर हूं इनका, तो उससे नहीं स्टार्ट किया, बल्कि अल्लाह ताला की बात से स्टार्ट किया कि अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया, यानी उसकी कुदरत का कैसे इनकार कर सकते, उसकी नाशुक्री करोगे? देखो तो सही कि तुम कहां थे, क्या थे, और कहां से उसने क्या बना दिया। ये तो ये इसी तरह से होना चाहिए, इंसान अपनी अना को सबसे आगे ना रख ले। हम तो इसको ही माइंड करके बैठ जाते, इसने मुझे ये कह दिया, अच्छा, कोई अल्लाह ताला के ऊपर कोई बात कह रहा है, उसकी नहीं इतनी परवाह कि वो इस बात का इनकार कर रहा है या अल्लाह ताला की कुदरत का है, इसका नहीं इतना दुख होता। सबसे ज्यादा दुख ये हो जाता है इसने मुझे ऐसे कह दिया था। कोई अपने आप हमारे लिए सबसे इज्जत वाला और सबसे बड़ा होता है ना, इसलिए। वलाउला, और क्यों नहीं, अब देखें जब उसको नसीहत कर रहा है ना, तो उसको इसकी गलती तो बता रहा है, लेकिन साथ, क्योंकि अकफर था, तूने कुफर किया, तूने नाशुक्री की, उसकी गलती बताई, साथ उसको नसीहत तालीम भी दी है। नसीहत के अंदर तालीम भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जब नसीहत करने लगे, जैसे हम बच्चों को करते हैं, उनकी बैशिंग ही करते रहते हैं, बैशिंग ही करते रहते हैं, उसको उनको उसमें से कोई तालीम का भी तो रास्ता बताए ना, कि कुछ के सही चीज क्या थी करने की। जब असल में वो दाखिल हुआ था अपने बाग में, तो उसने ये कुफर किया, और अब उसको वो कह रहा है कि बजाय तुम ये कहते तो तुम्हें क्या कहना चाहिए था जब तुम दाखिल हुए अपने बाग में। वलौला इस दखल था जन्नत का, क्यों नहीं है कि जब तुम दाखिल हुए अपनी जन्नत में, तो खुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो तुम ये कहते कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। क्या मतलब है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यानी जो अल्लाह ने चाहा वो ही हुआ, जो वो चाहता है वो ही होता है, यही हमारा अकीदा है, यही हमारा ईमान है कि सारी पावर अल्लाह के हाथ में है, जैसे वो चाहेगा वैसे होगा और जैसे वो नहीं चाहेगा वैसे नहीं होगा। जैसे हम सुबह शाम की दुआओं में भी, दुआ के बीच में ना, माशाल्लाह क्या ना, वमा लम यशा लम यकुन, अल्लाह ने जो चाहा वो हो गया, अब जो नहीं चाहा वो नहीं होगा। क्या मतलब इसका, इसको इस बात बताने का क्या जरूरत है कि अल्लाह ने जो चाहा किया, तुम ये क्यों नहीं कहते। इसलिए कि अगर तुम्हारे पास ये माल, ये नफरी, ये सारा कुछ जो भी तुम्हारे पास है, ये अल्लाह ने चाहा तो है ना, अपनी कुव्वत से थोड़ी है। कोई भी इंसान ये ना समझे कि जो उसके पास है वो मेरे अपनी पावर में था, मेरे अपने इल्म से, ये अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें दे दिया, अल्लाह चाहता किसी और को दे देता, अल्लाह ने नहीं चाहा तो मुझे नहीं दिया, तुम्हारे लिए चाहा तो तुम्हें दे दी। इसमें इंसान फिर अपनी तो फिर अपनी तो चीज फिर अना कुछ भी नहीं ना रहती, फिर अपना तो तकबर खत्म हो गया, क्योंकि ये तो किसी और ने दिया है और उसने जो चाहा है वो दिया है, तो फिर मैं क्या चीज हूं, फिर इसका मतलब मैं तो जीरो हो गई। ये आपको जीरो कर देता है, ये सारा कुछ, पूरी कुदरत अल्लाह के हाथ में। ये इतना कलमा हम कह के इतनी बड़ी बात कहते हैं, इससे पहले हमने इंशाअल्लाह देखा था, अब हम माशाअल्लाह देख रहे हैं। इंसान को समझा दिया गया, तुम अपने आप को ना बड़ी चीज समझो, तुम्हारी अपनी कुदरत ताकत के अंदर नहीं है चीजें, चाहे माल दौलत हो, चाहे औलाद हो, चाहे कोई स्टेटस हो, चाहे हुस्न हो, जमाल हो, चाहे अच्छा हस्बैंड मिल गया, अच्छी जगह शादी हो गई, अच्छे बच्चे मिल गए, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। कोई भी नेमत तुम्हें मिली है, इल्म ही चाहे आपको मिल गया, लेकिन माशा अल्लाह जो अल्लाह ने चाहा, इतना इंसान के लिए आजिज कर देने वाला, आजी वाला कलमा है। अपने लिए अगर देखे और दूसरे की भी नेमत जब देखे, तो अगर हसद आ रहा है या अगर दिल के अंदर कोई ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि इसको क्यों मिल गया या कुछ है, तो तब भी ये कलिमा कहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुद ताकीद फरमाई है कि जिसको कोई किसी की चीज अच्छी लगे, अपने भाई की सूरत या माल अच्छा लगे, तो उसके लिए वो बरकत की दुआ करे। और क्योंकि नजरे बद का लगना बरहक है, क्योंकि नजर लग जाती है वरना, और आपसे सलम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी चीज को देखा और वो इसको अपने लिए या किसी के लिए अच्छी लगे, यानी अपने लिए, चाहे आप अपने घर में दाखिल हो रहे हैं, आप कहते हैं मेरा घर कितना अच्छा है, आप शीशा देख रहे हैं, कम ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी चलो किसी को लग गया कि जी मैं आज बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, तो अपने ऊपर भी कहे माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो फरमाया उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी भी नजर लग जाती है, आपके बच्चे को जरूरी नहीं लोगों की नजर लगे, प्यार की भी नजर लग जाती है, हसद की भी नजर लग जाती है। इसलिए इमाम मालिक ने कहा जो शख्स भी अपने घर में दाखिल हो उसको चाहिए कि वो माशाल्लाह करे, और वह बिन मुनब्बे के घर के दरवाजे पे लिखा हुआ था माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि इंसान को याद आ जाता है ना एक तरह से। तो ये आपसे सरम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन कैस कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये भी है कि इंसान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहते, हौल का मतलब क्या कि यानी चेंज, कोई हालात का बदलना, वो भी और ला कुव्वता और ना कोई ताकत, ना हालात बदल सकते और ना कोई ताकत है किसी में सिवाय अल्लाह के, तो दोनों चीजों का इनकार कर दिया ना। कि ये भी मेरे मेरे बस में तो नहीं है मेरे हालात बदलने, और ना ही मेरे बस में है कि मैं कोई कुव्वत मेरे ताकत में है कोई चीज करने की। और ये भी है कि देखें गुनाहों से बचना भी मेरे बस में नहीं और नेकी करना भी मेरे मेरी ताकत में नहीं। तो उस वक्त भी ये कलमा कहना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जब हम घर से भी निकलते हैं तो तब भी हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो आप के लिए अल्लाह ताला का ये नाम काफी हो जाएगा, हदीस में आता है, और आपको अल्लाह ताला महफूज रखेगा शैतान से। शैतान बच्चों को भी कहें कि वो भी यही पढ़ के घर से निकले। तो जब इंसान के पास कोई नेमत हो तो याद रखें उस नेमत कोई अगर चाहते ना बका रहे, नेमत बाकी रहे, तो इन कलिमात को कहना चाहिए ताकि अपनी भी ना नजर लगे और किसी की भी ना लगे। और एक सहाबी ने दूसरे को देखा, वो बड़े हैंडसम थे तो उनको उन्होंने देखा उनका जिस्म बड़ा खूबसूरत है, तो कुछ कह दिया, कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गए और उनके कुछ डिजीज हो गई उनके सारे जिस्म के ऊपर। तो आपसे को पता चला तो आपने पूछा कि किसी ने कुछ कहा था, लोगों ने बताया हाँ फलां बंदे ने कहा था। तो आपसे ने फरमाया तुमने उसको बरकत की दुआ क्यों ना दी, यानी आप बरकत की दुआ दें जब किसी की भी कोई नेमत देखे ना, तो बारक अल्लाह फी बारक अल्लाह लका इस तरह से कह दिया करें, अल्लाह बारिक कह दें, अल्लाह आपको बरकत दे, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सारे कलिमात आप कह सकते हैं क्योंकि आपसे सबने फरमाया बरकत की दुआ दो उसको। तो हम तबारक अल्लाह कह देते हैं, तबारक अल्लाह तो अल्लाह ताला बाबरकत है, अल्लाह की जात बाबरकत है, वो तो अल्लाह की तारीफ है। लेकिन आपसे सबने क्या फरमाया उसको दुआ दो, इसमें दुआ नहीं है तबारक अल्लाह में, ठीक है, अल्लाह बारिक में दुआ है, अल्लाह आपको बरकत दे, या बारक अल्लाह तो इसमें बरकत की दुआ है। तो कोई भी किसी की चीज अच्छी लगे, कोई भी किसी की नेमत आपको पसंद आए, तो याद रखिए सिर्फ हसद से नजर नहीं लगती। कोई चीज पसंद आती है, इंसान अपने बच्चे से थोड़ी हसद कर रहा होता है, लेकिन कोई इतना प्यारा लगा अच्छा लगा उससे भी नजर लग जाती है। और नजर ऐसे है जैसे तीर होते हैं, तीरों की तरह है, वो लग भी सकती है और नहीं भी लग सकता तीर आपको। और नजर तो ऐसी चीज है कि इंसान को, हदीस में आता है ना कि ऊंट को हड्डिया तक पहुंचा दे और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, इतनी किलर चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। और तकदीर के ऊपर भी कोई चीज अगर तकदीर को पे गालिब आ सकती है तो नजर है। इंसान की नजर एक्चुअली, नजर क्या होती है, एक इफेक्ट होता है जो दूसरे के ऊपर पड़ जाता है। एक हदीस में आता है नजर आदमी को पहाड़ से धक्का दे देती है। तो इसलिए अपनी भी नेमतों के प्रोटेक्शन के लिए और दूसरे के पास भी जो नेमत है उसकी भी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि इंसान नजरे बद से अल्लाह की पनाह में आ जाए, उसके लिए दुआएं पढ़े, क्योंकि नजर बरहक है। मगर हर वक्त इसी प्रॉब्लम में ना रहा करें कि बस नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, बस हर वक्त नजर का ही वहम दिमाग के ऊपर सवार रहे, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर आप एक वहमी बन जाते, फिर अल्लाह की कुदरत क्या रही है अगर नजर ही बस लगनी है, हर वक्त नजर हमारे दिमाग पे सवार है। तो दुआएं पढ़ें, अल्लाह का जिक्र बहुत करें, जो जो सुबह शाम की हिफाजत की दुआएं वो पढ़ने से भी इंसान महफूज रहता है। और अगर आपको लगता है कि किसी ने नजर लगा दी है तो फिर उसके वजू का पानी लेके उस बंदे के ऊपर उंडेल दिया जाए, तो उससे भी नजर दूर हो जाती है। अगर बहुत सारे लोग किसी मजलिस में गए थे, उसके बाद लगा कि यहाँ से आने के बाद मेरे कुछ ऐसा हाल हुआ, तो वो सारे लोग पानी में हाथ डुबो दें और उस पानी को उसके बंदे के ऊपर बहा दें, यानी आप ले जाएं वो पानी और शावर में जाके अपने ऊपर बहा लें पानी। तो आप सल्लम ने इसके वो भी बताए हैं, इसके इलाज भी बताए हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा वो ना ज्यादा वहम करें और ना ही ऐसा ऐसे बेपरवाह हो जाएं कि अपनी हर चीज को लोगों को दिखाते फिरें और लोगों के ऊपर ब्रैग करते फिरें, वो भी ना करें। तो तुमने क्यों नहीं कहा माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो ये पूरा फ्रेज ही इस तरह से कहना चाहिए। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला हम जो कहते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा कलमा है। तो एक जगह पे आता है कि जन्नत के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है और जन्नत के खजानों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये पढ़ने को कहा था ना, तो उसने कहा कि मुझे क्या मिलेगा इसको पढ़ने से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां पे तुम्हारी जो प्रोटेक्शन है उसके अलावा तुम्हारे 100 मसाइल का हल, इस तो 100 मसले तुम्हारे हल हो जाएंगे इस कलमे से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये मसाइल का हल भी इसके अंदर है। तो अब हमने सीखा कि माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहना नहीं भूलना। अगर कोई देख के कुछ कहता है वाह तुम्हारे पास ये कैसी चीज है इस तरह, तो आप उसको याद दिला दें, अगर उसको नहीं याद ठीक है, अब आप खुद कह दें माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, उसको भी याद आ जाए। इन तरह नहीं अना अकल्ला मिनका माला वाला था, अगर तुम देखते हो मुझको कमतर अपने से, यानी तुम देख रहे हो अल्लाह की नजर में तो कौन कमतर है और कौन बरतर है ये तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन अगर तुम देखते हो इन तरह नहीं, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, अगर ये तो इंसान की अपनी नजर की बात है ना, कि वो उसको माल इतना दिमाग पे सवार है कि उसको लगता है कि यही बड़ाई की चीज है और ये मेरे से छोटा है। अब जाके वो इस चीज का जवाब दे रहा है जो इसने उसको जलील किया था ना, उसका जवाब दे रहा था। अना अकल्ला मिनका माल वाला था कि मैं कमतर हूं तुमसे माल में और औलाद में, और बाज ने इसीलिए आजू नफरा का माना औलाद भी किया है, जो इसने जब जवाब दिया तो इसने कहा औलाद, और वहां पे उसने क्या कहा था अना अक्सर मिनका माल हुआ आजू नफरा, इसने क्या कहा है इन तरह नहीं अना अकल्ला मिनका माल वाला था, तो उस बात का जवाब है ये। फासा रब्बी युति अली खैर मिन जन्नति का युरसिला अलैहा उस्वान मिन السماء وتسبيها زائدا زلقا, तो हो सकता है अल्लाह ताला मुझे इस तुम्हारी भी बाग से भी अच्छा बाग दे दे, अल्लाह के हाँ किस चीज की कमी है, क्योंकि जो माशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा जो अल्लाह चाहता है वो ही देता है ठीक है। तो इससे भी अच्छा दे दे, और तुम्हारे बाग के ऊपर कोई ऐसी आफत आ जाए आसमान से और ये बिल्कुल चटियल मैदान बन जाए। अब आप कहेंगे ये तो उसने उसको बद्दुआ दे दी, बद्दुआ नहीं दी, ये तो उसको वॉर्न कर रहा है कि खुदा से डर, कोई अल्लाह का खौफ कर, ये हालात भी हो सकते हैं, आज चीजें जो हैं कल को छीन भी सकती हैं। देख लें आप दुनिया में कितने ही लोगों को आपने देखा, आज इतने ऊपर होते हैं कल को वो छुपते फिरते हैं, कल को वो उनको पीछे पुलिस पड़ जाती है या फिर वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, सब कुछ लुट जाता है, बिल्कुल जमीन पे आ जाते हैं। बहुत हमारे सामने भी मिसालें होती हैं, कहाँ हमने उनको देखा होता है अपनी जिंदगियों में, उनको देखा होता है कि किस किस तरह वो अय्याशी के साथ रह रहे थे, और उसके बाद फिर लोगों से मांगते फिरते हैं कि सदका खैरात ही दे दो, कुछ जकात ही दे दो, उनका हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये लोग सदका खैरात और जकात मांगेंगे। तो इसी दुनिया में अल्लाह दिखाता है, तो ऐसा हो जाता है, कभी भी इन नेमतों को ऐसा ना समझे कि हाँ जो मेरे पास आ गया तो अब तो मैं ही हूं बस, और मैं ऑल इन ऑल, और अब ये कहाँ खत्म होगा, वी आर गुड, क्योंकि इंसान बेनियाज हो जाता है फिर अल्लाह से भी, जब वो देखता है ना कि मेरे पास सब कुछ आ गया है, तो कहता है मुझे अल्लाह अल्लाह करने की भी क्या जरूरत है, मतलब नमाजें तो वो पढ़े जो वो है, हमें क्या नमाजें पढ़ने की जरूरत, हमें क्या दुआएं करने की जरूरत और रोने की जरूरत अल्लाह के आगे, और इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, वो सोचते हैं कि हम अल्लाह से भी बेनियाज हो गए। किसी ने अल्लाह ताला माफ करे अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी मौके पे बहुत सारी बातें याद आती, किसी ने कहा मैंने तो अल्लाह से कभी कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि तो उनके पास था बहुत कुछ, इसलिए अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी बातें मैं अपने मुसलमानों की बता रही हूँ, कोई काफिरों की नहीं बात बता रही। तो ये ऐसे ही है जैसे एक माँ बच्चे को कहती है ना कि बेटा तुम पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो देखो दूसरे बच्चे पास हो जाएंगे तुम फेल हो जाओगे, ये कोई बद्दुआ है? बद्दुआ नहीं है, अगर उसको डराया जा रहा है हालात से, आगे आने वाली प्रॉब्लम से, तो वो कह रहा है कि हो सकता है तुम्हारा ये बाग खत्म हो जाए, जिसके ऊपर भी, इसलिए वो कह रहा है कि इस बाग के ऊपर ही उसको इतना मान और इतना ज्यादा फखर था ना, तो कोई आसमान से चीज आता, आसमान से क्यों, क्योंकि आसमान से आने वाली चीज के ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, मसलन आसमान से बारिश आ जाती है, मसलन आसमान से बिजली गिर जाती है, कोई आग बरसती है, आसमान से कोई पत्थर आ जाते हैं, कोई इंसान क्या कर सकता है उनके आगे, तो ऐसा हो जाए तो क्या करोगे फिर, ये तुम्हारा सारा बाग मैदान बन जाएगा, और इसमें हम आओ गौर फलन तस्तिया लहु तलबा, और यहाँ पानी नीचे अगर इतना गहरा चला जाए, यानी उसको बता रहा है कि तुम अल्लाह के कितने मोहताज हो, अगर आज आफियत दी भी है तो अल्लाह ने दी भी है, ये सब चीजें हो सकती हैं और आन की आन में हो जाती हैं, पलक झपकने में हो जाती हैं, कितनी बस्तियां आप देखें जलजले आए उसके बाद कुछ भी नहीं वहां पे रहा, पहचानी नहीं जाती कि ये वही जगह, सैलाब आ जाते हैं वो पहचानी नहीं जाती है वही जगह जहाँ पे लहलहाती फसलें थी, यहाँ पे लोग खुश हो खुर्रम रह रहे थे, ये वही जगह, तो आन की आन में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं इंसान को कैसे अपने आप को बड़ी चीज समझ लेता है या पावरफुल समझ लेता है या अपने आप को बड़ा कुछ जोर अपना समझ लेता है कि मैं क्या चीज हूं। आप इतनी सी बात सोचे, बहुत अपने आप को चीज समझने वाला बंदा एक दिन बीमार पड़ जाए ना, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। वो बिलियनेयर भी हो तो अस्पताल के कमरे के अंदर होता है जहां पे उसको नालियों से खुराक जा रही होती है। क्या उसका पैसा है? उसकी बला से दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जो मर्जी हो जाए, इकतदार किसको मिले और किसको नहीं मिले, वो कहता है मुझे क्या, मैं तो इस वक्त इतनी मुश्किल के अंदर, मुसीबत के अंदर हूं। इतनी सी देर में इंसान को अल्लाह ताला कहां से कहां कर देता है। कहां वो जहाजों में बैठने वाला, वो तकब्बुर से सूट पहन के बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाने वाला, वो बड़े बड़े लोगों से मिलने वाला, कहां अस्पताल के एक कमरे के अंदर पड़ा होता। तो अल्लाह ताला एक सेकंड में चाहे तो काया पलट दे। ये जो हम इतने बड़े बड़े बने फिरते हैं ना अपने दिमागों के अंदर, हमारे पता नहीं क्या खन्नास भरा होता है कि हम क्या चीज बन गए, मेरे पास क्या इल्म है, मेरा नॉलेज, मेरे लोग इतना समझते हैं, मेरी तो फॉलोइंग इतनी है, मेरे फैन इतने हैं, मैं तो फेसबुक पे देखो इतना है, मेरे फलानी जगह पे देखो मुझे लोग समझते इतना, मेरी तो तारीफें इतना करते। क्या चीज है हम, क्या है? तो हमारे पास कोई ऐसी बादशाहतें तो है नहीं कि जो हमें हो के अच्छा ये लुट जाएंगी, तो वो तो उसके साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं। लेकिन अब मैं इसलिए आपको एक बीमारी की मिसाल दे के बता रही हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सके कि जिस चीज को भी हम समझें, क्या उसका इल्म रह जाता है या क्या उसका बेचारे का पैसा या क्या चीज रह जाती है जो वो एक एड़ियां रगड़ रहा है एक जगह पे पड़ा हुआ, एक बिस्तर पे, उसके घर में 100 खाने भी फ्रिज में पड़े हो, उसको क्या है? उसकी वार्डरोब में हजारों लाखों के सूट भी पड़े हो, उसने क्या करना? तो रिलेट करें प्लीज, इसको को समझें, इसको एक स्टोरी ना समझें कि बस उस जमाने के एक बंदे की हो गई। तो उसने कहा इतना गहरा अगर पानी चला जाए कि तुम निकाल ही ना सको तो सारा बाग ही खत्म हो जाएगा, कहां से लाएगा पानी? वाही तभी समर ही तो, अल्लाह अकबर। अच्छा कितनी बातें हुई, सुबहान अल्लाह। जब अल्लाह ताला ने उसकी नेमतों की जिक्र फरमाया ना, तो देखें 2 आयतें कितनी लंबी लंबी आयतों में उसकी नेमतें बता दी। अल्लाह ताला ने उसको ये दिया, ये दिया, ये दिया, और जिस वक्त तबाही की बात आई ना, 2 वर्ड्स हैं सिर्फ, वही था भी समर ही, और घेर लिया गया उसके फल को, बस दैट्स इट। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया, इतना ही आसान है, चुटकी में सब कुछ ले जाना, इतना आसान है। इंसान खड़ा दंग रह जाता है, फअसबा युकल्लिबु कफ्फैहि अला मा अनफक, वो तो अपना हाथ ही मलता रहेगा, जैसे ऐसे ऐसे हम हाथ मलते हैं ना, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, ऐसे मलते हैं ना। अब आपको उस पिक्चर से तो नहीं दिखा देती, अब इमेजिन करें जब कुछ नुकसान हो जाता है, ऐसे इंसान करता है, वो अपनी हथेलियां उलट पुलट कर रहा है कि हो क्या गया, हाय ये मेरे साथ क्या बन गई। अलामान फकफिया, जो उसने खर्च किया, जो माल, जो मेहनत, जो कोशिश, जो जो कुछ उसके ऊपर लगाया था सरमाया, सब कुछ गया, सब कुछ गया, और अल्लाह ताला ने ये सिर्फ बता दिया, वो है तभी समझ, घेर लिया उसके फलों को, और फलों को किया सिर्फ, या समर में हमने पहले क्या किया है, पहले क्या पढ़ा है यहाँ पे समर में कि वकान लहू समर, पिछली आयत में ना 34 में उसके पास समर था, ये नतीजा। तो क्या मुफसिरीन ने बाज ने लिखा कि सिर्फ उसके फल खत्म हो गए, आग का भगोला आया और आग लग गई और सब कुछ जल के तबाह हो गया, या फिर वो कहते हैं कि सारा कुछ ही उसका खत्म हो गया जो भी था। और यहाँ पे वा का लफ्ज आया, फा नहीं आया, वा का हर्फ आया, फा आता तो फा का मतलब था कि उसी वक्त ही सब कुछ खत्म हो गया इमिजिएटली, लेकिन जब वाओ आता है ना, फा और वाओ में ये थोड़ा सा फर्क है, वाओ जब आता है तो उसमें थोड़ा वक्फा है, यानी अल्लाह ताला ने हो सकता है उसको चांस दिया, उसको मोहलत दी कि वो पलट आए, वो अपने आप को सही कर ले, मगर उसने नहीं किया, ठीक है, और उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब तबाह हो गया। हाय अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, वही खाविया अला उरूशिहा, सब छतें गिर पड़ी, छतों का गिरना सा जो होता है ना, वो एक सिंबलाइज करता है, सब कुछ कोलैप्स हो गया, एवरीथिंग वेंट डाउन, सब कुछ खत्म हो गया, बाग भी खत्म और सब। يقول، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بھی ربی احدا. دیکھیں وہ بھی پھر کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کاش میں شرک نہ کرتا، اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز نہ سمجھتا. تکبر کر کے انسان بڑا بن کے کس کو بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ نہ تو پہاڑوں کو سر کر لے گا، نہ زمین کو پھاڑ لے گا. وہ شرک کرتا ہے، یہ اس کا شرک کی تباہ کاری بتائی گئی. حالانکہ یہ شرک کے اکبر نہیں ہے، شرک کے اصغر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک شرک تو ہے. لیکن ایسا شرک انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتا ہے. شیطان وہاں سے آسمانوں سے دے مارا گیا، رجیم راندہ درگاہ، لعنت اس کے اوپر کر دی گئی اسی تکبر کی وجہ سے. اور تکبر سے فرعون اس کو کیسے ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو انسان ریئلائز کرے کہ بڑے بڑے فرعون آئے ہیں اس دنیا کے اندر، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو ہمارے سے کہیں زیادہ تھے چیزوں میں. تب یاد کیا کرے سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، جس وقت ہی ایسے بے نیازی سی آئے کہ اب میرے پاس وہ سب کچھ ہے، مجھے کیا ہے. تو سوچا کرے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہتی دی، دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملے گی. ان کی دعا تھی یہ، کبھی کسی کو ملے ہی نہیں گی نہیں. اور ان کی حکومت تو انسانوں پہ نہیں تھی، صرف جنوں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، سب پہ تھی. تب بھی ان کے اندر کتنی عاجزی تھی، وہ اللہ کے کیسے پیارے بندے تھے. تو مجھے کیا ایسا، میرے پاس ایسا کیا ہے کہ میں اتنی تکبر کے اندر آ جاؤں اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگوں. کسی نے کہا کہ ہم تو ایسے سب لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتے، ہم خاص خاص لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. ان کے مطابق تھا کہ جو بڑے سٹیٹس والے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں، یہ عام عام لوگوں سے ہم نہیں دوستی رکھتے. ان کی ہم نہ شادیوں پہ جاتے ہیں، نہ ہم ان سے دوستی رکھتے. یہ میں آپ کو یہ لوگوں سے ملنے سے، ایکسپیرینس سے یہ چیزیں بتا رہی ہوں، ایسے خیالی باتیں نہیں بتا رہے. کہ جب انسان کے دماغ کے اوپر تکبر آ جاتا ہے نا، تو اس کی دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ میں اس کو اس کے برابر کر دیا، جو دوسرا تھا اس کے وہ غریب والے کے برابر کر دیا اس کو. اللہ چاہے تو ایک دن میں جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، اب وہ سردار نے مکہ کہتے تھے یہ کیا غریب سے لوگ ہیں، یہ کیا ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دکھا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طرح سے ان کے برابر کر دے. اور ایک دن پھر وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوپر اٹھا دیا. تو جب انسان سے نعمتیں چھینے نا، تو بندے کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں صرف سوچیں کہ اس نے ہمیں نظر لگا دی، اس نے یہ کہا تھا نا اسی لیے یہ ہوا. اس بندے کا یہ بات اچھی تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بولا تھا اس لیے میرے ساتھ یہ تباہی. اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، یعنی اس نے ریئلائز کر لیا. بعض علماء کہتے ہیں یہ اس نے دنیا میں ریئلائز کر لیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جہنم میں ریئلائز کرے گا تو پھر وہ کہے گا. لیکن وہ زیادہ صحیح نہیں، زیادہ بات یہی صحیح لگتی کہ اس نے دنیا میں ریئلائز کر لیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ہائے کاش میں ایسی بات نہ کرتا. وہ جہنم میں جا کے تو سارے ہی مان جائیں گے، سارے ہی کہیں گے کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لیکن کیا ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، یا ہم خدا نہ خواستہ کوئی نعمت چھن جائے تو اس کے بعد بھی کیا ہمیں ہوش آتا ہے کہ نہیں؟ اکثریت کو پھر بھی نہیں آتا، کیونکہ تب بھی وہ کیا کہتے ہیں، اس نے مجھے نظر لگائی ہے، اس نے یہ کہہ دیا. لوگوں کی نظروں میں ہم اپنی غلطی کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے تو نہیں کوئی ایسا بڑا بول بول دیا، ہم نے تو نہیں کوئی ایسی بات کہہ دی، ہم نے تو نہیں کہیں کسی کو حقیر سمجھ لیا. اس کی طرف نہیں ہم کبھی جاتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی توبہ بھی نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی. بس پوائنٹنگ فنگر ڈھونڈنے لگتے ہیں، بس کہ کس کے اوپر الزام دوں کہ بس اس کی نظر لگی. نظر برحق کیا، نظر بھی لگ سکتی ہے، لیکن وائے آلویز نظر، وائے کہ نیور ایور ہم کبھی سوچے کہ ہماری کوئی غلطی. اس نے نہیں کہا تمہاری نظر لگ گئی، اس نے یہی کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یاد رکھیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شرک بربادی ہے، یہ دنیا میں بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور اس میں ہم اپنے عقیدے کو درست کریں کہ ہمارے عقیدے میں کہیں شرک نہ ہو، نہ شرک اصغر ہو फिर अकबर तो खैर अल्लाह माफी करे, फिर के असगर भी ना। दूसरे, हमें एज उम्मते मुस्लिमा कलेक्टिवली भी हमें इस बात की जरूरत है कि हम देखें कि आज हमारा वो जो अरूज का दौर था वो क्यों जवाल में बदल गया, क्यों हमसे नेमतें छिन गई। हम इस चीज को सोचें, अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। सिर्फ ये कह देना, जैसे पर्सनल के अंदर तो हम नजर के ऊपर कह देते हैं या फलां मेरा दुश्मन या फलां ने ऐसा कह दिया, जब कलेक्टिव बात होती फलां की साजिश, फलां हमारे पीछे पड़ा हुआ है, फलां देखो उसकी चाल चली है, ये उनकी प्लानिंग है, ये उनकी है, उधर पॉइंटिंग फिंगर्स, बस अपने ऊपर कोई तवज्जो है ही नहीं हमारी। और हमारे यहां तो देखें शिरके असगर तो क्या अकबर भी हो रहा है, जहां जहां जिन जिन चीजों की हम पूजा कर रहे हैं। वलम तकुन लहु फिअतु यंसुरूना हो, फिर कहाँ गई वो जमात जो उसका उसको बड़ा मान था, जिसका कहता था मेरे पास बड़ा जत्था है, कोई उसकी मदद करने को नहीं आया, उसके लिए कोई जमात नहीं थी जो उसकी मदद करती, मिन दूने ला अल्लाह के सिवा। अल्लाह ही किसी की मदद करे तो करे, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। फिर वमा काना मुंतसिरा, और ना ही वो खुद अपनी मदद करने की कोई काबिल रह गया था कि बचा लेता अपने आप को, नहीं बचा सका, नहीं अपना सब कुछ बचा सका, सब खत्म हो गया। हुनालिकल बलाया तो लिल्ला है हक, इससे पता चलता है कि अल्लाह ही की मदद जो है वो हक है। और ये भी माना है कि अल्लाह की मदद उनके लिए ही है जो हक पे है, वो अखैर उन सवाब वो अखैर उन उकबा, वो ही है जो बेहतर है, बदले के एतबार से वो बेहतर है, वो बदला यानी जो अल्लाह ताला बदला देता है वो बदला बेहतरीन है, बेस्ट है, और वो आखरत में ही हो सकता है, दुनिया में नहीं। दुनिया में भी अल्लाह ताला दे देता है बदले, लेकिन जो बदला आखरत में मिलेगा ना वो बेस्ट होगा, उस जैसा दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जन्नत और उसकी नेमतें हैं बदला, जो दुनिया में तो नहीं ना मिल सकती ये चीजें। वह खैरुन उकबा, और बेहतर है अंजाम के एतबार से, और अंजाम भी बेस्ट वही है जो अल्लाह ताला अंजाम ईमान वालों का करेगा, वो बेस्ट अंजाम है। और विलायत ये है कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की हिफाजत, ये भी विलायत है, और ये होती हक के साथ ही है। तो इन द एंड पता है, जब कोई मुश्किल आती है तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हक का ही साथ दिया, हक वाले ही ऊपर रहते हैं। और हर इंसान को मौत के बाद भी समझ आ जानी है कि हक क्या था और अल्लाह की मदद कैसे हक के साथ होती है। तो इस किस्से में बहुत सारे हमारे लिए सबक हैं, बहुत सारे सबक हैं। हम इन इन पॉइंट्स को अगर एक जगह लिख लें और बार बार इसको देखते रहें, ताकि कभी हमारे दिल में शैतान ऐसी बात ना डाल दे, क्योंकि शैतान जिस चीज से खुद जलील हुआ वो वही काम हमसे करवाता है, और फिर हम उसके उसमें आकर और खुद को बड़ी चीज समझने लगते। तो हमेशा यही याद रखें कि जो भी मेरे पास है, जो भी नॉट ओनली कि माल हो सिर्फ, लेकिन जो भी मेरे पास है वो सब ही सब अल्लाह ताला की देन है। और ये जो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और नजर इबाद है, ये पूरा एक टॉपिक है, और मैं राय राय इतना टाइम नहीं था, लेकिन मैं इसके ऊपर अलग से इंशाल्लाह ताला एक छोटा सा ऑडियो बना के तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहद अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقباً